बाप दादा के सारा बैत की वैराग और टिक को धारण करो, ये मुरली है 18 जनवरी 1998 की। बाप दादा एक बात का फिर से अटेंशन दिला रहे हैं कि वर्तमान वायुमंडल के अनुसार मन में दिल से अभी वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बाप दादा ने हर बच्चे को चाहे परवर्ती में है, चाहे सेवा केंद्र पर है, चाहे कहाँ भी रहते हैं, स्थूल साधन हर एक को दिए है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसके पास क्या नहीं, बाबा ने बोले स्थूल साधन, खाने पीने रहना, इसके साधन नहीं हो। जो बेहद के वैराग्य वृत्ति में रहते हुए आवश्यक साधन चाहिए वो बाबा ने सबको दिया है, सबके पास है। अगर कोई को कमी है तो किस कारण, उसके अपने आलस्य उसके अपने अलबेले और आलस्य के कारण कारण। बाकी ड्रामा अनुसार बाप दादा जानते हैं कि आवश्यक साधन सबके पास है। जो आवश्यक साधन है वह तो चलते ही है, लेकिन कहाँ कहाँ आवश्यकता से भी ज्यादा साधन है, साधना कम है और साधन का प्रयोग करना या कराना ज्यादा है। इसीलिए बाप दादा आज बाप समान बनने के दिवस पर विशेष क्या करवा रहे, अंडरलाइन करवा रहे कि साधनों के प्रयोग का अनुभव बहुत किया, जो किया वह भी बहुत अच्छा किया। आप साधना को बढ़ाना अर्थात देहत की वैराग्य वृत्ति को लाना। ब्रह्मा बाप को देखा, लास्ट घड़ी तक बच्चों को साधन बहुत दिए। लेकिन स्वयं साधनों के प्रयोग से बाबा क्या रहे, दूर होते हुए दूर रहना, उसे कहेंगे वैराग्य। लेकिन कुछ है ही नहीं है और है कि हमको तो वैराग्य है, हम तो है ही वैरागी, तो वह कैसे होगा, वह तो बात ही अलग है। सब कुछ होते हुए नॉलेज और विश्व कल्याण की भावना से बाप को स्वयं को प्रत्यक्ष करने की भावना से अभी साधनों के बजाय बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। जैसे स्थापना के आदि में साधन कम नहीं थे, लेकिन क्या था, बेहद के वैराग्य वृत्ति की भट्टी में पड़े हुए थे। ये 14 वर्ष जो तपस्या की, ये बेहद की वैराग्य वृत्ति का क्या बना, और वायुमंडल बना, वायुमंडल था। बाप दादा ने अभी साधन बहुत दिए, साधनों की अभी कोई कमी नहीं है, लेकिन कैसे रहना है, होते हुए भी बेहद के वैरागी हो, विश्व की आत्माओं के कल्याण के प्रति भी इस समय इस विधि की आवश्यकता है, क्योंकि चारों ओर इच्छाएं बढ़ रही है। इच्छाओं के वश आत्माएं कैसी है और
परेशान
है, चाहे पद्मपति है लेकिन इच्छाओं से वह भी परेशान है। वायुमंडल में आत्माओं की परेशानी का विशेष कारण क्या है, ये हाथ की इच्छाएं। इसमें एक बात मैंने दादा से विश्वरतन दादा से पूछा था, मैं कहीं जाने की इच्छा थी तो दादा को पूछा है, दादा मैं वहाँ जाके आऊँ, तो दादा ने मेरे को बोला कि मनोज न ईस्ट न वेस्ट, मधुबनी इज द बेस्ट। बोले मधुबन जैसे वातावरण आपको कहीं मिलेगा नहीं, मधुबन जैसे ऐसी भूमि कहीं मिलेगी नहीं। इस समय विधि की आवश्यकता है क्योंकि चारों ओर इच्छाएं बढ़ रही है। इच्छाओं के वश आत्माएं परेशान है, चाहे पदम पति है लेकिन इच्छाओं से वह परेशान है। वायुमंडल में आवश्यकता वायुमंडल में आत्माओं की परेशानी का विशेष कारण यह हाथ की इच्छाएं। आप अपने बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा उन आत्माओं में भी वैराग वृत्ति फैलाओ। आपके वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्माएं कैसी है? उसमें बाबा ने दो बातें बताई। आत्माएं एकदम सुखी शांत बन नहीं सकती, सुखी और शांत बन नहीं सकती, परेशानी से छूट नहीं सकती है। आप वृक्ष की जड़ हो। ब्राह्मणों का स्थान कहाँ पे दिखाया है? वृक्ष में कहाँ दिखाया है? जड़ में दिखाया है ना। तो आप फाउंडेशन है, आपकी लहर विश्व में फैलेगी। इसीलिए बाप दादा विशेष साकार में ब्रह्मा बाप समान बनने की विधि क्या वैराग्य वृत्ति की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहा है। हर एक से अनुभव हो कि यह साधनों वश नहीं लेकिन साधना में रहने वाले है। होते हुए वैराग्य वृत्ति हो आवश्यक साधन यूज करो लेकिन जितना हो सकता है उतना क्या करना है? बाबा ने बोला दिल से वैराग्य वृत्ति से साधनों के वशीभूत होकर नहीं, अभी साधना का वायुमंडल चारों ओर बनाओ। समय समीप के प्रमाण अभी सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। सेवा का विस्तार इस वर्ष में बहुत किया। इस वर्ष चारों ओर बड़े बड़े प्रोग्राम किए, उसमें मेगा प्रोग्राम और सेवा से सहयोगी आत्माएं भी बहुत बने हैं। समीप आए, संपर्क में आए, लेकिन क्या सिर्फ सहयोगी बनाना है, यहाँ तक रखना है क्या? सहयोगी आत्माएं अच्छी अच्छी है, उन सहयोगी क्वालिटी वाली आत्माओं को और संबंध में लाओ, अनुभव कराओ, जिससे सहयोगी से सहयोगी बन जाए। इसके लिए एक तो क्या करना है, उसके लिए एक तो बाबा ने बोला कि एक तो साधना करनी, साधना का वायुमंडल, और दूसरा बेहद की वैराग वृत्ति का वायुमंडल हो, तो इससे सहज योगी बन जाएंगे। उन्हों की सेवा भले करते रहो लेकिन क्या करना है, सेवा के साथ साथ बाबा ने बोला लेकिन साथ में साधना तपस्या का वायुमंडल आवश्यक है। अभी चारों ओर पावरफुल तपस्या करनी है, जो तपस्या मनसा सेवा के निमित्त बने, ऐसी पावरफुल सेवा अभी तपस्या से करनी है। अभी मनसा सेवा अर्थात क्या बाबा ने बोला, मनसा सेवा अर्थात बाबा ने बोला संकल्प द्वारा सेवा की टचिंग हो, उसकी आवश्यकता है। समय समीप आ रहा है, निरंतर स्थितियां और निरंतर पावरफुल वायुमंडल की आवश्यकता है। बाप समान बनना है तो पहले क्या चाहिए? वैराग्य की वैराग्य वृत्ति धारण करो, यही ब्रह्मा बाप की अंत तक विशेषता देखी। न वैभव के वैभव में आए लगाव रहा, न बच्चों में। सबसे वैराग्य वृत्ति तो आज के दिन का बाप समान बनने का पाठ पक्का करना, बस ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय अवश्य आगे बढ़ाएगा। अभी क्या याद रखा, कौन सी बात को अंडरलाइन किया? बेहद का वैराग्य। अभी आत्माओं को इच्छाओं से बचाओ। फिर बाबा बोलते, बिचारे बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, तो अभी रहम दिल बनो। रहम की लहर बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा फैलाओ। कैसे फैलाएंगे रहम की लहर? अभी सभी ऊंचे थे ऊंचे परम धाम में बाप के, फिर बाबा ने ड्रिल करवाए कि अभी ऊंचे थे ऊंचे परम धाम में बाप के साथ बैठ सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि से, रहम की दृष्टि दो, वाइब्रेशन फैलाओ। फैला सकते हैं ना, तो बस अभी परमधाम में बाप के साथ बैठ जाओ। वहां से यह बेहद के रहम का वायुमंडल फैलाओ। फिर दूसरी मुरली थी, अभी भी वैराग्य वृत्ति नहीं आई है, ये है 18 जनवरी 99 की 99। अभी बेहद अभी भी वैराग वृत्ति नहीं आई है, इसमें बाप दादा भी देख रहे हैं। कब आरंभ होता है? अभी तो साधन यूज करने के अनुभव ज्यादा है। बाप दादा जानते हैं कि जब तक ब्राह्मणों में बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज नहीं हुई है तो क्या होगा, विश्व में भी वैराग्य वृत्ति नहीं आ सकती है। सारे विश्व में वैराग्य वृत्ति ही क्या करेगी? और बाबा ने बहुत अच्छे बोला, बड़ी बात नहीं, सारे विश्व में वैराग्य वृत्ति की, वैराग्य वृत्ति कुछ पापों से मुक्त करेगी। अभी शक्ति सेना को रहम हो गए, मुरली पूरी जी। शांति, वैसे तो मैंने दादा के साथ रहा, दादा के साथ वैसे 9-10 साल के करीबन रहा था, तो दादा तो इतने सिंपल और इतने सिंपल थे, एकदम जैसे वो एक त्यागी तपस्वी थे। वैसे भी उनको कुछ साधन उसकी जरूरत थी नहीं, जैसे मैं शुरू में 98 दादा के साथ में रहा, लेकिन दादा कभी सेवा लेते नहीं थे, खुद की सेवा खुद करना करते थे। मैं 2001 तक दादा खुद अपनी सेवा खुद करते थे, मैं तो केवल ऑफिस में सेवा करते थे, बस केवल पानी वगैरह रख देते थे, बाकी खुद की सेवा खुद। और इतना उनका इतना एक इतना सिंपल, जैसे कपड़े भी कितने सालों के बाद उन्होंने नए लिए होंगे, देखे इतने। और वो जैसे बटन थे ना, जब बाबा ने कराची में बाबा ने बना करके दिए, वही लास्ट घड़ी तक वही बटन यूज किया दादा ने। हाँ इतना
एक साथ फट जाता है, फिर उसका लेकर दूसरे में लगाते हैं।
नहीं, वही उसको जिसे रस्सी बांध के वो ये धागा वैसे विश्वरतन दादा यज्ञ के आदि रत्न से, वैसे उन्होंने यज्ञ में बहुत प्रकार की सेवाएं की, मतलब बहुत हड्डी हड्डी दी, जैसे जैसे बाबा के वो अनन्य रत्न जैसे जैसे, क्योंकि उन्होंने जब शुरू में बाबा जैसे चार चित्र बनाए ना मुख्य, जैसे जार गोला और सृष्टि चक्र त्रिमूर्ति, तो ये उस समय दादा कभी आर्ट का काम नहीं किए थे, कभी उनको कुछ आता नहीं था, लेकिन बाबा ने, बाबा के प्रति बहुत निश्चय, इतना अटूट, तो बाबा ने उनको बोला कि बच्चे आपको ये करना है, जैसे बनाना है, लेकिन कैसे बनाना कुछ उनको आता नहीं लेकिन फिर भी बोले बाबा ने बोला है तो बनाए बनाओ, अगर कैसे बनाना शुरू किया तो बहुत अच्छा बनाया, फिर बाबा को दिखाते रहे, तो ऐसे उन्होंने यज्ञ में तो खूब सेवाएं की, और ऐसे कल्प वृक्ष में भी उनका जैसे आदि रत्न, जैसे आज बाबा ने इसमें बताया ना कि कल्प वृक्ष जड़ों में फाउंडेशन है, उसमें आठ रत्नों में ऐसे उनको उनका भी बिठाया हुआ है, तो ऐसे आत्माओं के साथ कर सेवा करने का सौभाग्य मिला था, तो वैसे बहुत वो इतने सिंपल थे, और कमरे में भी जाए कभी कभी मधुबन वालों की क्लास होती थी तो बड़ी दादी उदाहरण देती, बोले दादा का कमरा देख के आओ, उनकी अलमारी देख के आओ, एकदम इतना एक्यूरेट इतना परफेक्ट, जिसे कभी हमारे से कोई गलती होती थी ना, इतना प्यार से समझाते थे और इतना युक्ति से कि देखो, और इतना प्यार से समझाए कि मनोज देखो, अरे 16 कला संपूर्ण बनना है तो हर काम एक्यूरेट और परफेक्ट करो, कोई भी काम में जरा भी डिफेक्ट नहीं होनी चाहिए, जैसे कोई भी कार्य काम भी कितना साधारण भी हो, लेकिन अजय उसके कारण किसी का संकल्प तक भी नहीं चलना चाहिए, ऐसे सूक्ष्म बातों का भी बहुत अटेंशन था, जैसे कमरे में जाएगा पानी कहाँ रखना है, बस उसी स्थान पर रखना, हर कहीं रख देंगे फिर बोलेगा देखो मनोज अगर आपको 16 कला संपूर्ण बनना है ना तो वही सबका स्थान आप, ऐसे अलमारी में भी जैसे कपड़े भी आप रखेंगे ना, एकदम इतना अच्छे वो रखते थे व्यवस्था से, और उनका जैसे चलने का भी इतना, जैसे चल भी रहे तो जैसे फरिश्ते एक रथ, और जैसे हम नीचे कभी शांतिवन भी जाते थे, गाड़ी में भी जाते थे ना, तो इतना जैसे गाड़ी में भी जाते थे पूरा योग युक्त होके, बस यहाँ थे पांडवों से बैठेंगे शांतिवन तक, जैसे लग रहा है जैसे हम गाड़ी में बैठे नहीं एकदम ऊपर बाबा के साथ जा रहे, ऐसे लगता था, और क्योंकि वो दादा बाबा ड्राइवर से भी बात नहीं करने देंगे, बोले नहीं बस उनका अटेंशन है गाड़ी चलाने, उनसे बात नहीं करूं, और इतना जैसे उनसे बात नहीं करने देगा, और इतना जैसे योग युक्त होके, जैसे गाड़ी में जाते थे तो कुछ गाड़ी में है ही नहीं, एकदम ऊपर बाबा के साथ जा रहे थे, और इतना योगी, तो और उनकी स्थिति लास्ट समय तक ऐसी रही, एकदम जैसे माने वो अकाउंट का हिसाब किताब तो रखते ही थे, लेकिन खुद का अकाउंट इतना क्लियर करके गए लास्ट घड़ी तक, जब उनको शरीर भी छोड़ने का, जैसे उनको पहले से अनुभव हो गया था मेरे को जाना है, उसके एक दिन पहले आए यहाँ पे पांडवन में, आए पांडवन में जैसे उस दिन आए दादा, तो दादा को मेरे बाबा कमरे में ले करके डायरेक्ट कमरे में लेके आए, तो और दोपहर का टाइम था तो मैं भोजन लेकर के दादा को भोजन करके दादा को रेस्ट करने के लिए बोल रहे सो गए थे, और मैं भी आगे का कुंडा बंद कर दिया था, तो दादा का तो दादा का इतना प्यार था बाबा से, जब तक वो बाबा कमरे में नहीं जाएगा तब तक वो कमरे में नहीं जाते थे, लेकिन उस दिन बाबा कमरे में नहीं गए तो मैं भी रेस्ट करने के लिए मैं भी वहां सो गया था, और दादा भी, तो दादा ने क्योंकि मैं आगे का कोई दरवाजा बंद कर दिया था, कुंडी लगा दिया था, लेकिन दादा ने इतना युक्ति से पीछे बाथरूम में गए, बाथरूम में पीछे एक दरवाजा है उसमें दादा ने जैसे बाल्टी में जैसे नल चालू कर दिया, तो वैसे लगा कि जैसे मनोज को कि दादा स्नान कर रहे करके, और वो चालू करके पीछे के दरवाजे से निकल गए बाबा कमरे में जाके, इतना और इतना, एक तो बाबा से बहुत प्यार और यज्ञ से भी और सेवा से भी इतना प्यार था, जैसे जब भी वो अकेले होंगे तो कभी गीत गाएगा, बाबा तेरा बनने से सुख मिलता है लाई है, और दूसरा गीत था बाबा आपने तो कमाल कर दिया, हमारे जीवन खुशहाल कर दी। ऐसे गए अकेले में एकांत में ऐसे गीत गाते रहते थे और इतना अच्छा। नहीं जैसे रात को भी कमरे में अकेले होते थे ना तो अपने आप गीत। हाँ मैं पीछे था वहाँ पे शांतिवन में, तो पीछे कमरा था तो दरवाजे खुला रहता था मेरे। और इतना जैसे ऑफिस में भी जाएगा तो ऑफिस में जैसे यीशु दादी से पूछेगा दादी को दादी कुछ कहा सेवा है, या तो फिर गोलक भाई बिना बहन उनसे पूछेगा क्योंकि दादा अकाउंट काम करते थे और जैसे एकदम जो भी बैंक का सारा कारोबार वो करते थे, चेक ड्राफ्ट आते थे तो वो दादा नोट करते थे उनके चेक नंबर डेट और कहाँ से आया वो सारा। तो वो जाए और लास्ट दिन जब शरीर छोड़ना था तो उससे पहले भी गए ऑफिस में, ऑफिस में जा करके दादा ने गोलक भाई बिना से पूछा बोले कुछ काम है कुछ सेवा है, बोलते नहीं ये सेवा। तो उस दिन सेवा नहीं थी तो फिर मैंने दादा मुरली है, क्योंकि मुरली दादा रोज डायरी में नोट करते थे और मुरली कम से कम दिन में 3-4 बार तो पढ़ते थे दादा और फिर उसको डायरी में नोट करते थे। तो उस दिन जब शरीर छोड़ा उसी दिन दादा ने मुरली का आधा घंटा पहले डायरी में मुरली नोट किया क्योंकि दादा सिंधी में लिखते थे, सिंधी में लिखते थे तो उस दिन भी लिखा। और फिर उसी दिन गोकुल भाई जैसे ऊपर आ रहे थे पांडवन शांतिवन से, तो दादा को बोला दादा ऊपर चलना है, बोले हाँ ऊपर जाना है। तो ऑफिस में थे करीबन 12:30 बजे, तो वहां से फिर दादा को मैं कमरे में लेके आया तो रास्ते में यही बोलता है बोले ऊपर जाना है ऊपर जाना है ऊपर जाना है, जो भी मिलते थे और सबको हाथ मिलाते बस ऊपर जाना है। और उसके एक घंटे के बाद दादा ने उस दिन ब्रह्मा भोजन था, जो मारा जितने भी आइटम बने सब खाते ये किया। हाँ और उसके बाद फिर वैसे ऊपर गए। तो और उसके पहले दिन भी दादा यहाँ पे आए थे मधुबन में, तो चारों धाम की पूरा यात्रा किया, या पीस पार्क में गए, पीस पार्क में सबसे मिलते हुए पूरा पैदल किया, वॉकिंग किया, वॉकिंग करते हुए सबसे हाथ मिला करके आए। फिर शाम को आए मैंने यहाँ पे शाम का योग किया, योग करने के बाद फिर दादा सो गए। तो फिर उस दिन है ना दादा ऐसे सोए थे तो मैं दादा से बहुत प्यार है मैं तो, क्योंकि मेरे उस समय छोटे आए थे तो दादा मेरे को इतना छोटेपन से ही इतनी पालना दे एकदम, और लास्ट में खुद बच्चे जैसे बन गए। और उस दिन सरे छोड़ने से एक दिन पहले दादा ऐसे सोए थे तो मैं भी ऐसे दादा के साथ ऐसे सिर रखा, तो कम से कम क्योंकि दादा का हाथ वो इतना मुलायम एकदम जैसे फरिश्ते जैसे रूई जैसे थे, तो उस दिन मेरे को कम से कम आधा पौना घंटा तक ऐसे सिर के ऊपर हाथ घुमा रहा है और मैं दादा को प्यार करूँ। वो सीन तो इतना और इतना कम से कम पौना आधा घंटा तक दादा ने ऐसे फिर सो गए, तो इतना अच्छा लग रहा था जैसे कि जो हिसाब किताब रखते थे ना दादा, जितना ये था वो ऐसे लग रहा जैसे दादा सब हिसाब किताब चुपचुप कर रहा है, जिसके साथ जितना प्यार है सब उस दिन ऐसे दे रहा था ऐसे लग रहा था। और यहाँ जैसे कि ऑफिस में भी उस दिन दादा का जाने का दिल ही नहीं होता कर रहे थे नीचे शांतिवन में, तो मैंने बोला दादा चलो चलो करके। तो फिर दादा ने ऑफिस में कमरे में सबको ऑफिस वालों को बुलाया और आधा पौना घंटा तक सबको ऐसा पावरफुल दृष्टि देकर के योग करवाया, और योग करवाने के बाद फिर नीचे शांतिवन में गए। और शांतिवन में उस दिन शाम के समय गए, रात हो गई थी, तो दादा शांतिवन में रात को भोजन करके सो गए। फिर उस दिन 2 बजे से वहां पे यीशु कल्याण भवन बाबा का कमरा है, तो 2 बजे से दादा उठ गए और वो दरवाजा खोल के दादा बाबा कमरे में गए और इतना पावरफुल योग कर रहे थे, कम से कम 3:30 तक इतना पावरफुल योग किया। और योग करने के बाद फिर दादा आए फिर कमरे में जा करके तो सो गए। फिर 4:30 बजे 4:45 बजे उठ करके फिर स्नान वगैरह करके फिर क्लास में गए, और दादा का नियम था पूरा शांति उन्हें चक्कर लगाना पैदल करने वॉकिंग। शुरू में तो दादा वॉकिंग नहीं करते थे, लेकिन डॉक्टर ने मेरे को बोला दादा वॉकिंग है, दादा को बोले वॉकिंग करवाना है कैसे, तो पहले दादा को मैं हाथ पकड़ के खींच खींच के दादा थोड़ी दूर करके दो कदम करके, फिर इतनी अच्छी आदत बन गई पूरा, फिर शांति उन्हें पूरा वॉकिंग करते थे, पूरा चक्कर लगाते थे। और उस दिन भी पूरा डायमंड हल्का और सबका चक्कर लगा करके आए ऑफिस में, और सबसे मिलते हुए बस एकदम इतना हाथ मिलाते हुए जैसे ऐसे लग रहा था जैसे सबसे छुट्टी ले रहे थे। तो ऐसे दादा के छुट्टी लेते हुए सबसे, और उस दिन फिर दादा ने करीबन एक बजे करीब आज सर दोपहर को 1 बजे, और जैसे दादा ने शरीर छोड़ा उस दिन टेलीफोन सब बंद, कुछ काम ही नहीं कर रहे, किसी को फोन करना है
उस टाइम आपके आंखों में कुछ
नहीं है? नहीं उस समय तो कुछ नहीं आया, मैं तो फिर डॉक्टर उस समय कुछ ये नहीं था, फिर मैं ऐसे डॉक्टर को क्योंकि फोन काम ही नहीं करा था, फिर दादा कैसे सुला कर, हाँ मैं था साथ में था ना भोजन कर रहे थे दादा, तो उस समय जैसे वोमिटिंग करने के खुद दादा उठ कर बाथरूम गए, और क्योंकि मैं पीछे पीछे था दादा के, तो मैं ऐसे पकड़ रहा था दादा को पीछे से जो खाया, और उस समय जो उल्टी हुई उस समय मेरे हाथ में ऐसे, फिर मैं ऐसे दादा को उठा के करके बेड पे लेटाया, और फिर डॉक्टर को फिर बुला करके ले गया, इतने में दादा उस समय थोड़ा अनकॉन्शियस हो गए थे। तो ऐसे दादा क्योंकि वो तो दादा थे इतने योगी थे, सबसे ऐसे क्लियर छुट्टी लेकर के, हाँ साइन भी एकदम एक्यूरेट, और दादा का इतना ये था कि मेरे कारण किसी का संकल्प नहीं, जैसे दादा के जैसे ऑफिस में हमको कारोबार करते हैं जैसे पोस्ट लिख रहे भेजना है, तो दादा बोलते कि देखो आप एड्रेस लिख रहे लेकिन आपने एड्रेस ठीक नहीं लिखा, और ऐसे लिखा तो जो पोस्ट मेन वाला है उसको पढ़ने में नहीं आएगा, उसका संकल्प चलेगा तो वो भी किसके हिसाब के था मैं, तो ऐसे दादा बहुत छोटी छोटी बातों के ऊपर बहुत अटेंशन है, और आप चल भी रहे तो कैसे चल रहे, अगर आवाज से चल रहे तो बोले गए कि कौन सी चाल है, बोले देवताओं जैसे चाल है कि नहीं है, बोले देखो बाबा को सामने देखो, बाबा कैसे चल रहा है, बाबा कैसे खा रहा है, बाबा कैसे देख रहा है, बाबा कैसे बोल रहा है, बोले हमको केवल बाबा को ही फॉलो करना है, न ब्रदर न सिस्टर, ओनली बाबा। और बड़ों के प्रति बहुत रिगार्ड था, बड़ी दादी को दादा इतना उचित नजर से देखते थे कि एक दिन मेरे को बोल रहे दादा कि देखो मनोज बड़ी दादी कौन है, बड़ी दादी के कौन है, स्वयं ब्रह्मा बाप समान है, स्वयं ब्रह्मा बाप की सीट पर है, तो उनके लिए हमारा जो भी इशारा है उनका जो भी कहना हमको करना ही है, ऐसे बहुत ऊंची नजर से, और सबके प्रति बहुत रिगार्ड, क्योंकि ऑफिस में भी एक तरफ रमेश भाई व्यक्ति केबिन थी भाई साहब की बड़ी, और एक तरफ दादा भाई साहब, क्योंकि अकाउंट में तो बहने भाई साहब से बहुत डरती थी, मैंने डर लगता था रमेश भाई से, लेकिन दादा के पास जाने से एकदम इतना अच्छे अच्छे अनुभव करते थे, तो दादा इतना प्यार से किसी को भी ऐसे लगे जैसे आपसे भी कभी कुछ जोर से कभी बोल रहा है, आंखों से भी नहीं दिखता था ऐसे, बहुत ऐसे सिंपल। हाँ और क्रिकेट खेलने का भी बहुत दादा है, क्योंकि दादा को मेरे को बोला डॉक्टर ने बोले अब दादा को वॉकिंग एक्सरसाइज करवाओ, तो उस समय दादा कुछ कैसे नहीं थे, तो मैं दादा को ऐसे खेलते ऐसे खेल में जैसे वॉकिंग करवा रहे, तो वहाँ विश्व कल्याण में आधा घंटा पौना घंटा एक ऐसी बाल ले आए थे और बैट, तो दादा इतने अच्छे बैटिंग बॉलिंग करते थे एक भी बाल वो छोड़ेंगे नहीं, बहुत इतने अच्छे बाबा। और रोज हमारा आधा पौना घंटा था सुबह शाम ऐसे ही दादा के साथ जाता था, और उसके साथ में जैसे और भी भाई आ जाते थे, बहुत इतना अच्छा लगता था जैसे बाबा के साथ खेल रहे, बस क्लास में उनका दादा का दो तीन पार्ट पक्का, एक तो बाबा मेरे साथ है बाबा मुझे देख रहा है और बाबा मुझे चला रहा है। ऑफिस में भी एक एक चेयर अलग से रखी थी, वहाँ पे गए एक दिन में बैठ गया, मेरा उठाया बोले यहाँ नहीं बैठ। बाबा और वो बाबा के बिना रहते ही नहीं थे, एकदम इतना जैसे अब और उनका बहुत इतना अच्छे, जैसे कुछ भी टोली भी कभी कुछ खाना होगा वो इतना युक्ति से बोलेगा कि जैसे कभी खाने का डील होगा और मैं नहीं दूंगा तो वो फिर कभी कभी दादा गीत गाएगा, या कभी कुछ फल खाने का दिल होगा तो वो दादा गीत गाते थे, आधा केला खाने से दुख मिलता है लाई। इतना अरे ऑफिस में भी जाएगा, जैसे मैं तो अलग से वहाँ पे ऑफिस में दो थी, यही एक तरफ बिना बिना वो बैठे थे, एक तरफ यीशु दादी और गोलक भाई वहाँ पे बैठे थे, तो मैं यीशु दादी और गोलक भाई के साथ में बैठा था उधर। तो बिना बहन को बोले मनोज आए, उनको जाने का दिल होगा ना, मनोज आए ना आए, लास्ट टाइम एकदम जैसे बच्चे जैसे हो गए थे ना, तो मनोज आए ना आए मैं तो चला जाऊंगा। तो फिर बिना बहन मेरे को बुला के रख ली और इतना युक्ति से इतना प्यार से बोलते थे, एकदम जैसे शुरू में तो मैं आया था तब देखे एकदम बच्चे जैसे थे, तो इतनी बार दादा ने सब प्रकार की पालना दी और लास्ट समय इतने खुद जैसे बच्चे बन गए। और फिर मेरे को दादियां बोलने यीशु दादी बोलती थी कि बोले मनोज आप है ना, हमें इसलिए हम निश्चिंत थे आप संभाल रहे इसलिए, तो एकदम दादा पूरा बच्चे जैसे। और फिर कभी कभी तो बड़ों को बोल रहे कि बोले मनोज जैसे कहेगा वैसे, क्योंकि पहले मैं शुरू में दादा जैसे कहते थे वैसे चलते थे, लेकिन लास्ट समय में एकदम जैसे सब प्रकार के उपराम हुए थे दादा। और कोई भी जैसे दादा के सामने मैंने अपने दांत दिखाए ऐसे जोर शोर से, तो दादा उसी समय क्लास करवाएगा। और क्या क्लास में भी जैसे दादा पांडव में केबिन में बैठते थे, तो उस समय शांताराम भाई थे, तो शांताराम भाई कभी कभी ध्यान में तो 7 बज जाते थे, वो लाइट ये करके रेड लाइट दादा खुद करते थे रेड लाइट। और जैसे आगे बैठने वाले पर बहुत अटेंशन, जैसे मैं भी बैठता था मेरे को 3-4 बार बोले आज आप कैसे सुन रहे थे मुरली। जैसे इधर देख रहे थे या थोड़ा सा कुछ उबासी आई है तो तुरंत दादा अटेंशन दिलाते थे ऐसे, तो बहुत इतना जैसे मुरली से बहुत प्यार है। और मुरली सर जैसे कि शाम को रात को भी दादा लिखेगा, डायरी में भी लिखते थे और पढ़ते भी थे।
दादी ने बोला दादा इन लोगों को रोज रात को आधा घंटा बैठ के समझाओ, फिर वहां शुरू किया था दादी ऑफिस के सामने 8-10 लोग ही थे। पहला नंबर बाबा दादा बोलता था वीरिटी का इम्पोर्टेंट, वीरिटी का और बाबा साथ में बैठा है, बाबा देख रहा आप बैठा कर रहे क्या कर रहे क्या सेवा कर रहे इसका पूरा अटेंशन। और दूसरी बात एक बार दादा को लाइन से उतरा
दादा एक बार ऊपर से कमरे से उतर के नीचे आया झोपड़ी के पास से, मैं ऐसी झोपड़ी में योग करने के लिए जा रहा था, वहाँ हाथ ऐसा पकड़ा, क्या आज मुरली पड़ा है? मैंने जो पढ़ा तो थोड़ा सा बस सुना, दादा ने एक शब्द ऐसी शब्द बोला एक मुरली एक एक अक्षर भी धारण कर ले तो संपूर्ण बन जाएंगे एक मुरली। फिर दादा ने हर पहले क्या है विशाल भवन में रहता था दादा, विशाल भवन में वहाँ उनका कमरा था, ठंडी के दिनों में कमरे में तो ठंडी लगता है, दादा इतना प्यार से बोलता था चंद्रशेखर बगीचे में बहुत अच्छा रहेगा, फिर हम समझ जाते थे टेबल ले जाके वहाँ बाहर बगीचे में रख देते थे, वहीं ऑफिस का कारोबार चलता था। और दादा कभी कोई चीज जरूरत है या कोई ऐसा है वो डायरेक्ट कभी नहीं बोला, ऐसे काम कराओ ये कराओ, इनडायरेक्टली उसका भाव से ही वो संकल्प करते ही हम लोगों को टच होता था, दादा ये लेके आना है या हाँ ठीक है ठीक है।
दादा का ऐसे स्लोगन पक्का है, वो जैसे मेरे को बोलते
ठीक है
वही बोलते थे मेरे को बोलते जैसे मनोज कोई भी चीज आप मांग करके नहीं लेके आना, मांगने से मरना वाला ऐसे कहे दादा। इतना है किसी से मांगना नहीं क्योंकि इतना नियम में पक्का था दादा। और एक बार क्या हुआ जैसे कमरे में जैसे रमेश भाई के भाई साहब के कमरा और दादा के पास पास में थे, तो रमेश भाई के पास का नया सोफा आया था, तो उनका जो पुराना सोफा था और दादा के पास बहुत पुराना सोफा रखा था, तो मैंने वो लगे मैं दादा को पूछा नहीं और वो सोफा में दादा कमरे में अंदर रखवा दिया और दादा का जो पुराना सोफा बाहर निकाल ले। तो मेरे को बोला उस समय बुलाया, बोले मनोज ये सोफा क्यों लगाए अंदर रखवाया, बोले दादा अच्छा है करके मैंने बोला, बोलते नहीं मेरे को जो बाबा ने दिया है वही हमको रखना है, वही चाहिए बोले दूसरा हमको कुछ भी नहीं चाहिए। और बोले जब तक आप नहीं निकालेंगे तब तक मैं कमरे में अंदर नहीं जाऊं। तो इतना दादा बहुत ऐसी छोटी छोटी बातों के ऊपर बहुत है। और कमरा में जैसे आप जाएंगे तो एकदम बहुत सिंपल, लेकिन उनके अलमारी देखेंगे ना कैसे कपड़ा एकदम इतना परफेक्ट से रखा हुआ है, जैसे छोटे कपड़े और कपड़े कितने पूरे सालों के बाद दादा ने लिए होंगे एकदम जैसे त्यागी थे बोलते गए। और एक जोड़ी कपड़ा है ना दो दिन दादा का चलता था एकदम जैसे ऐसे कभी वो सल भी नहीं पड़ता था, ऐसे एकदम जैसे फ्रेश कपड़ा। और उनका बिस्तर वगैरह सब इतना रॉयल जैसे, और उसमें जैसे वो मम्मा का दिखाते थे ना जैसे मम्मा सोती थी तो जैसे सल वगैरह कुछ वैसे नहीं होता था, ऐसे दादा का ये थे उनका बेड और सब कुछ कपड़े भी ऐसे। हाँ
डिस्पेंसरी की सेवा भी पहले शुरू शुरू में इंजेक्शन इंजेक्शन लगाता था। और दादा एक चीज नहीं खेलने में भी बड़ा मस्त था। हाँ क्रिकेट तो छोड़ो, आपको उससे पहले की जो विशाल भवन है विशाल भवन के आंगन में वॉलीबॉल खेलते थे और पीस पार्क में जाके फुटबॉल खेलते थे, गोलकीपर था मजाला उनके बाल छूट जाए हाथ से। ऐसे चीज दादा के अंदर जिस काम करता था एक्यूरेट एक्यूरेसी, और कोई भी बात ऐसा देता था वो कभी भूल नहीं सकेंगे। कोई भी बात बाबा के बाबा देख रहा है या आपके बुद्धि में कहाँ तक बैठा है वो दादा इतना क्लियर करके समझाता था वो बोल ही नहीं सकता व्यक्ति। वो तो शुरू शुरू की बात है, बाबा का बाल काटता था, माना हर कोई काम ऐसा नहीं यज्ञ का नहीं किया हो, हर काम किया हुआ है। मतलब दादा का विशेषता ये है जितना प्यारा है उतना न्यारा भी है, जितना रमणीकता है उतना आशीर्वादमुक्ता भी है, हर प्रकार के हर गुण। और जब दादी के कमरे में जाता था बाबा दादा दादी के कमरे में दादा जाता था उस समय हमने एक बार देखा दादी से दादी आई है बैठो बैठो बोले तो भी खड़े रहा, फिर आखिरी दादी ने कहा बैठो दादा आप मेरे साथ बैठो। माना एक आप वहां देखने की बात यह है कि कितना उनको रिस्पेक्ट रिगार्ड है बड़ों के प्रति। ओम शांति।